الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آتيتم إهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اللہ جل جلالہ من والہو نے انسانی زندگی کے بقا کے لیے اور اس دنیا کو تا قیامت آباد رکھنے کے لیے جو نظام اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے چلایا ہے اس نظام کا ایک حصہ ہے نکاح، کہ نکاح کا کرنا۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک انسانی ضرورت ہے نکاح کا کرنا۔ اللہ جل جلالہ من والہو نے اس میں دو چیزیں، دو طرح کے خرچ اللہ نے نکاح میں رکھے ہیں۔ ایک خرچ ہے مہر کا ادا کرنا اور دوسرا خرچ ہے ولیمے کا کرنا۔ قرآن پاک میں جیسے گزشتہ بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے محرمات کا ذکر، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان کا ذکر کر کے اللہ نے آگے یہی بات فرمائی کہ وہ احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ باقی سب عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، جن سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ان تبتغوا باموالکم، کہ وہاں نکاح کے بدلے میں مال دینا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا، یعنی مہر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کو لازمی قرار دیا ہے اور مہر کو عورت کا حق بتایا ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، چونکہ نکاح کے معاملے میں خاتون عورت پورے طور سے اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دیتی ہیں، مرد اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے مرد جو عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بدل کے طور پر، اس کے معاوضے کے طور پر اللہ جل شانہ نے مہر کی ادائیگی کو لازم قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بچیوں کے نکاح کیے، اور بے شمار صحابہ کے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ہیں۔ شریعت نے خاص طور سے احناف نے بھی اموالکم کے لفظ کو سامنے رکھ کر یہ طے کیا ہے کہ پیسہ ہی دینا چاہیے. مال دے یعنی پیسہ دے, کوئی ایسی چیز جو سامان بنتی ہو اور جو چیز قیمت والی ہو ایسی چیز ادا کریں. شوافے وغیرہ کے پاس خدمتیں بھی دے سکتے ہیں, جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا دیا بیوی کو یا بیوی کی ایک سال تک خدمت کر دی, یہ بھی ان کے پاس مہر بن سکتا ہے. احناف کے پاس یہ سب چیزیں مہر نہیں بن سکتی. احناف نے تاکید کے ساتھ میں کہا ہے کہ قرآن نے بھی اموالی کو مال ہونا چاہیے, تو مال کو طے کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا اقل من عشرت دراہم, ولا مہر اقل من عشرت دراہم, کہ دس درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا ہے. دس درہم یہ جو ہے مہر ہوتا ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے ہمارے ہاں, جس کو ہم 52.5 تولہ جی چاندی کہتے ہیں, جو تقریباً 613 یا 614 گرام کے اعتبار سے چاندی ہوتی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم ہوتی تھی. 200 درہم کو 52.5 تولہ میں لایا گیا, اور آج اگر وہ گرام کے حساب سے پیش کیا جائے تو وہ تقریباً 613 کچھ آگے پیچھے گرام ہوتے ہیں, تو 613 200 درہم کا گویا حساب ہے, اور اس کی قیمت تقریباً آج کل 40 سے 50 ہزار کے آس پاس ہوتی ہے. تو ایک درہم وہ 250 روپے کا ہوتا ہے, اور 10 درہم گویا کم سے کم 2500 روپے کا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ 2500 روپے کم سے کم مہر ہونا چاہیے. 2500 روپے سے کم کا کوئی مہر نہیں ہو سکتا, شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ 2500 روپے سے کم کوئی مہر ادا کیا جائے. مہر کے بڑھا کر دینے میں ایک بات جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے, اور معاشرے میں یہ چیز جڑ پکڑ رہی ہے, کہ مہر کے طے کرنے کے معاملے میں لڑکے والے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. لڑکے والے اپنی طرف سے سناتے ہیں کہ ہم اتنا مہر دیں گے, حالانکہ مہر کی تعین, مہر فکس کرنے کا حق, مہر کی تعین کا حق لڑکے والوں کو نہیں ہے, یہ لڑکی والوں کا حق ہے کہ لڑکی کے گھرانے خاندان کے اعتبار سے مہر طے کیا جانا چاہیے, کہ لڑکی کا گھرانہ, لڑکی کا خاندان, ان کے گھرانے میں کیا مہر چلتا ہے. ان کے گھرانے میں کا مطلب فقہا نے, علماء نے لکھا ہے کہ ان کے گھر یعنی لڑکی کی پھوپھو کو کیا مہر دیا گیا, یا لڑکی کے والد کے جی پھوپھو کو کیا مہر دیا گیا. اس لیے کہ لڑکی کی پھوپھو یہ دادیال کے خاندان کی ہے, باپ کے گھرانے کی ہے, تو ان کا جو مہر ہوتا ہے اس مہر کے اعتبار سے لڑکی کا مہر متعین کیا جاتا ہے, اور مہر کی تعین کا حق لڑکی والوں کو ہے. آج کل جی چونکہ جو بھی لینے کا معاملہ ہوتا ہے اس سارے معاملات میں لڑکے والے ہی خود ہی فیصلہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ اور یہ, اس کی پوری فہرست بھی ان کی طرف سے تیار ہوتی ہے, اور لڑکی والوں کو جو دینا چاہیے کم از کم اس معاملے میں بھی ان کو آزاد رکھا جائے کہ وہ اپنا مطالبہ کریں کہ مہر کتنا ہونا چاہیے, بجائے اس میں ان کو آزاد رکھنے کے وہاں بھی قید و پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اتنا مہر ادا کریں گے. حالانکہ لڑکی کے مہر کے ادا کرنے کا حق جی وہ لڑکی والوں کے پاس تعین کا حق ہے کہ وہ متعین کریں کہ ہمارے گھر خاندان کا اتنا مہر ہے, یہ مہر ہمیں ادا کیا جانا چاہیے. مہر کی ادائیگی میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تساہل ہے, انتہائی لاپرواہی ہے. جن جن کے نکاح ہو چکے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے یہیں ہمارے اس مجمع میں دریافت کیا جائے کہ کتنوں نے مہر ادا کر دیا ہے, تو بات صاف ہو جائے گی کہ ہم میں سے شاید بہت ساروں نے مہر ادا ہی نہیں کیا, چونکہ مہر کی ادائیگی کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے. मेहर कब याद आता है? जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बड़े बुजुर्गों को याद आता है। खामखा जबरदस्ती उस बच्ची को, लड़की को, दुल्हन को और उस खातून को, उस रोती हुई बिलबिलाती हुई खातून को पकड़कर जनाजे के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। एक माँ से जबरदस्ती कहते हैं कि दूध बख्श दो, और दूसरे बीवी से जबरदस्ती कहते हैं कि मेहर बख्श दो। ये दोनों चीजें गलत हैं जी। दूध बख्शने का सवाल ही नहीं है। दूध माँ का नहीं था जो बख्श दे, दूध तो अल्लाह का था जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से दिया था। वो एक खजाना था जो अल्लाह ताला ने बच्चे की पैदाइश के मौके पर जारी किया था, और माँ ने बच्चे को दूध पिलाकर उसके ऊपर एहसान किया। लेकिन उस दूध के बख्शने की या बख्शवाने की ताकत किसी के पास नहीं है, वो तो अल्लाह की नेमत है। ये खामखा की एक रस्म है जो हमारे माशरे में जड़ पकड़ गई है। इस तरह की बेहुदा रस्मों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। और मेहर बख्शवाना, मेहर बख्शवाने का भी सवाल नहीं पैदा होता है। जब निकाह जी निकाह किया गया, एक उम्र होती है जिसमें निकाह होता है, तो एक रिश्ता बना, मौत पर वह रिश्ता मुकम्मल हो जाता है, मौत पर वह रिश्ता कंप्लीट हो जाता है जी। जब वह रिश्ता मुकम्मल हो गया तो अब मेहर तो मुअक्कद हो गया, और भी ज्यादा मजबूत हो गया, उसको माफ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए माफी का मसला नहीं है बल्कि अदायगी का मसला है कि मर्दों को अपने तौर से मेहर को अदा करना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को एक जज्बा पैदा हुआ, हजरत उमर के अंदर एक जोश पैदा हुआ, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला खुतबों में फरमाने लगे कि ज्यादा मेहर मत बांधो। चूंकि हालात जब बदलते हैं तो हालात की तब्दीली में कुछ चीजें दिखावे की जी नुमाइश की पैदा हो जाती हैं। ये नुमाइशी चीजें इंसान को मुतासिर करती हैं, उसके माशरे को मुतासिर करती हैं। तो हो सकता है हजरत उमर के जमाने में भी ये बात आई हो और आज के जमाने में भी ये बात मौजूद है कि नुमाइशी चीजें, बहुत सारी चीजें नुमाइशी हैं, लोग सिर्फ नुमाइश को ही पसंद करते हैं, और ये नुमाइश पर ही सबसे ज्यादा आदमी तवज्जो देता है। तो मेहर में भी नुमाइश का जज्बा लोगों के अंदर पैदा हो गया कि दिखावे का मेहर देना तो है नहीं, देने का कोई इरादा भी नहीं है, सिर्फ मेहर जब लिखवाया जाए और जब निकाह के मौके पर मेहर कहलवाया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, तो उस मौके पर मेहर की मिकदार ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमारे ये जो मेहर की मिकदार है, इस मिकदार की ज्यादती को सुनकर लोग मुतासिर हों, इतना बड़ा मेहर दे रहे हैं, इस तरह की बातें चर्चा में आए, इसलिए लोग नुमाइशी मेहर बनाते हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी शायद ऐसा हो गया था, या पता नहीं क्या बात है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बहुत ताकीद के साथ में, ताकीद के साथ खुतबों में फरमाने लगे कि मेहर ज्यादा मत बांधना, और सुनो अगर ज्यादा मेहर बांधना कोई इज्जत की, शराफत की, कोई एहतराम की, कोई वकार की चीज होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निकाहों में ज्यादा मेहर बांधते, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बच्चियों की शादियां की, अल्लाह के रसूल अपनी बच्चियों का निकाह ज्यादा से बच्चियों के मेहर में ज्यादा से ज्यादा मेहर बांधते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 दिरहम जी 400 दिरहम से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर नहीं बांधा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला का मेहर, जिसको मेहरे फातिमी कहा जाता है, वो चांदी के एतबार से, आज के जमाने के एतबार से 1.5 केजी 300 ग्राम यानी 1 केजी 800 ग्राम और 900 मिलीग्राम का बनता है। 1 केजी 800 ग्राम और 900 मिलीग्राम का बनता है, और उसकी कीमत आज के जमाने के एतबार से तकरीबन 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए के आसपास होती है, 1.5 लाख के आसपास होती है या 1.5 लाख से थोड़ी सी कम होगी जी। 70 पर 2000 72,250 रुपए आज 1 केजी जी चांदी की कीमत है। आज के दिन 72,250 रुपए चांदी की कीमत है, इस एतबार से 1.5 लाख के करीब करीब या 1,30,000-35,000 रुपए मेहरे फातिमी बनती है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ताकीद में कह रहे थे कि ये मेहरे फातिमी की जो मकदार है उस मकदार से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर नहीं बांधा, इस वजह से ज्यादा लंबा और बड़ा मेहर मत बांधो, देने का तो इरादा नहीं लेकिन सिर्फ लोगों में चर्चे और नुमाइश के लिए इस तरह के मेहर बांधते हो, मेहर कम बांधो लेकिन अदा करो। यह हजरत उमर ने ताकीद की। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की ताकीद जुमा के खुतबे होते थे, जुमा के खुतबों में बात हुई तो एक खातून को, एक औरत को बात पहुंची, सहाबिया को। सहाबिया ने सुना तो वो सीधे हजरत उमर के पास आ गई। और बाद रिवायत से पता चलता है कि जुमे के खुतबे में हजरत उमर ने खुतबा दिया तो दौरान खुतबा वो खातून खड़ी हो गई। हजरत उमर जिनका दबदबा, जिनका रोब और जिनका माशाल्लाह जी जलाल ऐसा था कि आधी दुनिया पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जलाल का असर पड़ता था और लोग आपसे मरूब होते थे, लेकिन एक सहाबिया खातून जी दीन के मामले में, अल्लाह के अहकाम के मामले में उमर के रोब दबदबे के सामने जी मरूब नहीं हुई, मुतासिर नहीं हुई, वह खातून खड़ी हो गई। बाद रिवायत से पता चलता है कि दौरान खुतबा, और बाद रिवायत से पता चलता है कि खुतबे के बाद किसी और मौके पर वो खातून हजरत उमर के पास आई और हजरत उमर से आके कहा कि कुरान तो हमें इजाजत देता है कि चाहे जितना मेहर बांधो किंतार, तो इन आते ही तुम एहदाहुन किंतारन, कि अगर तुमने उसको खजाना भी दे दिया हो, बहुत बड़ी मकदार भी दे दी हो, तो फला ताखुदु मिन्हु शैया, कि उसमें से थोड़ा सा भी वापस न लेना। कि वही नरत तुम इस्तिब्दाल अज़ौजिन मकान अज़ौजिन, निकाह हुआ और मेहर तय हुआ, निकाह के बाद मेहर तय होने के बाद रिश्ते में कुछ मामलात में गड़बड़ हो गई, अब उन उस मामलात की खराबी और बिगाड़ की वजह से यह रिश्ता खत्म हो रहा है और तुम इस बीवी को छोड़कर किसी और से निकाह करना चाहते हो, तो जिस खातून का तुम्हारे से निकाह हुआ उसको जो मेहर तय किया गया उस मेहर में से फला ताखुजु मिन्हु शैया, एक रत्ती बराबर, एक रुपया भी तुम वापस नहीं ले सकते हो। ये मर्दों को अल्लाह ताला ने बताया कि उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकते, वो औरत का हक है। उसको बताने के लिए कुरान ने लफ्ज किंतार लिया है, किंतार के माने खजाना, बहुत बड़ा हिस्सा। तो उस खातून ने आके कहा, आप कहते हो 4,000 से ज्यादा नहीं, 400 दिरहम से ज्यादा नहीं बांध सकते, जबकि कुरान और अल्लाह किंतार कह रहा है, तो आप कौन होते हैं हमारे हक पर लात मारने वाले, हमारे मामले में दखल देने वाले, जब कुरान इजाजत दे रहा है, अल्लाह इजाजत दे रहे हैं, आप कौन होते हैं जो कह रहे हैं कि मिकदार मेहर कम होना चाहिए, मेहर की मिकदार को कम करना चाहिए। तो हजरत उमर ने उसके बाद कहा, अल्लाहुम गफरा, परवरदिगार माफी मांगता हूं। ओ जी, मैं तो ये समझता था कि मैंने कुरान समझा, लेकिन हजरत उमर का जुमला है, कुल्लुहुम अफ़क़हु मिन उमर, कि एक उमर ही ना समझ है, बाकी सब के सब कुरान समझने वाले हैं। कैसी आजीजी है, तवाज़ो है। हजरत उमर के बारे में कहा जाता है, काना वक्काफन इंदल कुरान इंद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की कोई आयत सुना दी जाती, हजरत उमर उस लकीर के आगे नहीं बढ़ते थे, बिल्कुल अपने आप को रोक लेते, पूरे तौर से अपने आप को काबू में कर लेते। तो हजरत उमर ने पूरी कुव्वत से कहा, नहीं, मेरी बात सही नहीं है, कुरान जो कह रहा वो सही है कि औरत को मेहर में बड़ी से बड़ी रकम दी जा सकती है और देना चाहिए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि 400 दिरहम का मतलब आज के जमाने के अतबार से तकरीबन जो है 80-90,000 रुपए, ये आम तौर से गोया मेहर बांधा जाता था, तो इस तरह का मेहर बांधना चाहिए, लेकिन चूंकि मामला लड़के वालों के हाथ में चला जाता है जी, तो वहां जोड़े की रकम तो माशाल्लाह लाखों में तय होती है और मेहर की रकम तय करने में जी अल्लाह माफ फरमाए पूरी बखीली दिखाई जाती है और पूरी कंजूसी का मुजाहरा किया जाता है कि कम से कम मेहर में तय कराने की कोशिश की जाती है और उसके मुकाबले में जोड़े जहेज उसमें बहुत वसात और माशाल्लाह वहां पूरी सखावत दिखाई जाती है। कि लेने का मामला है तो लेने में तो माशाल्लाह हाथ कुशादा फराग़दस्त हो और देने में हाथ तंग हो जाए। अल्लाह जल्ले शानहु ने मेहर की अदायगी में गुंजाइश रखी। और जैसे मैंने अर्ज किया कि वो औरत के घर और खानदान का हक है, उस औरत के घर और खानदान के हक को मर्द यानी लड़के वालों को उछकना नहीं चाहिए, उसको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। दूसरा खर्च है निकाह के मामले में वलीमे का। वलीमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए और 11 निकाहों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर निकाह में वलीमा किया है, हर निकाह में रसूलुल्लाह का वलीमा हुआ है। हजरत खदीजा से निकाह के बाद भी वलीमा हुआ है, हजरत आयशा से निकाह के बाद, हजरत सौदा से निकाह के बाद, ये जितने निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए तमाम निकाहों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा भी किया है। और एक वलीमा हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह हुआ, उस निकाह में जो वलीमा हुआ वो सबसे ज्यादा कुशादा, सबसे ज्यादा बेहतरीन वलीमा हुआ है। और वो वलीमा भी कैसा हुआ, हदीस की किताबों के अंदर आता है, मदीने पाक की एक खातून है हजरत उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा, इमाम हजरत मालिक रजी अल्लाह तु की अहलिया जी, अनस इब्ने मालिक की वालिदा, हजरत उम्मे सुलेम उनका नाम है। बड़ी समझदार खातून थी, बड़ी जीरक खातून थी और बहुत ही मौका शनाज खातून थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो आप समझें उस औरत की जीरकी, उस औरत की समझदारी कितनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे सुलेम अपने बेटे को लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आपको छोटे मोटे कामों के लिए एक कम उम्र बच्चे की जरूरत पेश आएगी और आप किसको इधर उधर तलाश करते फिरेंगे, ये मेरा बेटा आपके हवाले है, जब तक आप हैं ये मेरा बेटा आपकी आपका खादिम है, आपकी खिदमत करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया हजरत अनस को और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के साथ हर लम्हे साथ रहते थे और हर लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जिन छोटे मोटे कामों के लिए बच्चों की जरूरत पेश आती है और वो बच्चों का सारा काम हजरत अनस करते थे। छोटे बच्चे थे, 10 साल की उम्र थी, हजरत अनस ने अपने 10 साल तजुर्बा, 10 साल खिदमत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 10 साल की उम्र से जवान हो गए, 20 साल के जवान हुए, तो ये पूरे 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। हजरत अनस अपनी खिदमत का जी वो निजाम बताते हैं, अपना तजुर्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 10 साल का है वो बताते हैं कि पूरे 10 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल छोटे थे, 10 साल के थे, कोई काम बताते तो हजरत अनस वो काम करने के लिए निकलते, रास्ते में बच्चों को खेलता हुआ देखते तो काम भूल जाते, खेल में लग जाते हैं। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम देके भेजा है तो आप इंतजार में हैं कि शायद वो किसी को बुलाना है या कुछ लाना है, कुछ देना है, आप इंतजार में हैं। बहुत देर हो गई, अनस नहीं आए तो रसूलुल्लाह बाहर आके देखते तो बच्चा खेल रहा है। अब उसको जी मुतवज्जे करके कहते कि जाओ, मैंने जो काम कहा है वो जल्दी करो। हजरत अनस फरमाते हैं पूरे 10 साल के अरसे में मैंने जो किया उसके लिए रसूलुल्लाह ने ये नहीं पूछा कि क्यों किया, और जो मैंने नहीं किया उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने ये नहीं पूछा कि मैंने क्यों नहीं किया। पूरे 10 साल में कभी रसूलुल्लाह ने मुझे डांट कर बात नहीं फरमाई। और 10 साल की खिदमत की बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, जिस दुआ के नतीजे में हजरत अनस फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने मुझे दुआ दी, अल्लाह अनस की उम्र में बरकत अता फरमा, इसके माल में बरकत अता फरमा और इसके खानदान में बरकत अता फरमा। तो रसूलुल्लाह की खिदमत की बरकत से जो अल्लाह के रसूल ने दुआ दी उस दुआ का असर यह हुआ माशाल्लाह कि हजरत अनस की उम्र 100 साल से ज्यादा हो गई। और खानदान में बरकत की जो दुआ दी, हजरत अनस खुद फरमाते हैं आखिर दौर में आखिर उम्र में कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि मैंने 100 से ज्यादा अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को दफन कर दिया है। 100 से ज्यादा बच्चे या बच्चों के बच्चे, पोते नवासे मैंने दफन कर दिए हैं। मतलब 100 से ज्यादा तो वो हो गए जो दुनिया से जा चुके हैं, उसके अलावा बहुत सारे वो हैं जो अभी दुनिया में जिंदा हैं। और फिर अल्लाह ने माल में दौलत में इतनी बरकत दी थी कि आम तौर से मदीने के लोग या अतराफ के लोग क्या करते, हजरत अनस के माल में माल मिलाकर तिजारत करते ताकि हमें भी फायदा हो जाए। हजरत अनस के लिए अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दुआए बरकत दी है तो उस दुआए बरकत से हम भी फायदा उठा लें। तो हजरत उम्मे सुलैम उनकी वालिदा हैं, बड़ी समझदार खातून थी। तो हजरत ज़ैनब बिनते जहश का निकाह अल्लाह जल्ले शानहु ने आसमानों पे किया था। इनका निकाह हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे उनसे निकाह हुआ था। फिर उस निकाह के बाद जब आपस में रिश्ता इस्तेवार नहीं रह सका तो उन्होंने तलाक दे दी। तलाक के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, वो आसमानों पे निकाह हुआ था। उस निकाह के मौके पर हजरत उम्मे सुलैम ने एक खास किस्म की देग खाने की बनाकर रसूलुल्लाह के वलीमे के लिए रवाना फरमाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बेहतरीन वलीमा सहाबा को खिलाया और खिलाकर माशाल्लाह तमाम सहाबा को गया खूब अच्छे से अच्छा बेहतरीन लाजवाब वलीमा रसूलुल्लाह का हुआ। दौरान सफर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए। हजरत मैमुना से मकाम शरीफ में निकाह हुआ, मकाम शरीफ में रुखसती हुई, मकाम शरीफ में हजरत मैमुना का इंतकाल हुआ। तो दरमियाने सफर में कहीं निकाह हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियाने सफर में ही वलीमा किया और वलीमा आपका ऐसा होता कि सहाबा से कहते आपके पास जो कुछ है वो लेकर आ जाओ। दस्तर बिछाया जाता, उस दस्तर पर सहाबा के तोशों में जो बच्चे खजूर या दूसरी कोई चीज होती उसको दस्तर पर बिछाया जाता और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ये तुम्हारे रसूल का वलीमा है, खाओ। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे हुए हैं और आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को वलीमे की ताकीद की है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला ने, गुज़श्ता भी मैंने अर्ज किया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह वो मदीने में हिजरत करके आए। मक्के के बड़े मालदार आदमी थे, बड़े ताजिर थे, व्यापारी आदमी थे, वो मदीना हिजरत करके आए। मदीने में हजरत सईद इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह तआला ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से कहा मेरा घर आपके लिए आधा, मेरा बाग आपके लिए आधा, मेरी दो बीवियां हैं एक आपके लिए, मैं तलाक दे देता हूँ आप निकाह कर लें। ये सारी बात सईद इब्ने ज़ैद से हुई लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा आपका घर आपको मुबारक, आपकी बीवियां आपको मुबारक, आपका बाग आपको मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो, कमाने का हुनर मुझे आता है, कमाना कैसा ये मैं जानता हूं, मुझे आप सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो। तो उन्होंने बाजार का रास्ता बताया। पहले दिन गए कुछ नहीं था हाथ में, कोई रासुल माल सरमाया कैपिटल कुछ नहीं, खाली हाथ गए और खाली हाथ जाकर एक जगह से लिया दूसरी जगह बेच दिया जी, सामान लेके कुछ वक्त ले लिया, कहा कि ये सामान दे दो अभी एक घंटे दो घंटे में आपकी कीमत अदा कर दूंगा जी। वो सामान लेके दूसरे को किसी के बेच दिया, उसमें कुछ नफा कमाया, फिर उनसे लेके किसी को बेच दिया। इस तरह दिन भर के कारोबार में थोड़ा सा पनीर बचा। हदीस में आता है कि थोड़ा सा पनीर कमा के लाए। फिर अगले दिन गए, फिर अगले दिन कमाया और कुछ दिन मदीना आकर ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा मजलिस में आए तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला के कपड़ों पर जी वो रंग लगा हुआ था, मेहंदी का रंग, मेहंदी का रंग हजरत अब्दुर्रहमान के कपड़ों पर लगा हुआ था, जर्दी का रंग। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के पूछा अब्दुर्रहमान शादी हो गई? तो हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा रसूलुल्लाह हो गया, निकाह रसूलुल्लाह को भी नहीं बताया हम। मदीने पाक में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है, सबसे बड़ी शख्सियत कौन है, और वो शख्सियत ऐसी नहीं है जिनसे कुछ, जिनसे सिर्फ शनासाई हो, जान पहचान हो नहीं, उन पर तो जान छिड़कते हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं, अपनी जान निसार करते हैं, उनको भी नहीं बताया। निकाह इतनी सादी चीज है के जरूरत का पूरा करना है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने रसूलुल्लाह को भी बताए बगैर निकाह कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, चूंकि पूरा खाली हाथ हो गए थे जी, खाली हाथ मक्के से मदीना आए थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेहर भी अदा किया कि नहीं किया। कहा कि रसूलुल्लाह जरूर मेहर अदा किया है। पूछा कितना अदा किया, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि वज़्नु नवातिन मिन ज़हबिन, के जी एक खजूर की गुटली के बराबर सोना मैंने दिया है जी, खजूर की गुटली के बराबर सोना। माशाल्लाह कमा लिया था उन्होंने जी, कुछ पैसा आ गया था हाथ में, हाथ खुल गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ से उनकी इस कुव्वत इस्तेदाद को इस्तितात को देखकर अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया औलिम वलो बिशातिन, एक बकरी जुबा करके क्यों ना हो वलीमा जरूर करना। तो वलीमा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे के लिए ताकीद की है और आपने खुद अपने निकाहों में वलीमा किया है और हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को ताकीद की है कि वो भी वलीमा करें। लेकिन वलीमा भी नुमाइश का नहीं होना चाहिए जी, नुमाइश का वलीमा पसंदीदा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया बिसल वलीमा, तो बदतरीन वलीमा वो है जिसमें सिर्फ जी मालदारों को और बड़े लोगों को बुलाया जाए और उनको बुलाकर ये ताकीद कर दी जाए कि वेडिंग कार्ड के साथ में आपको आना होगा, बगैर उसके दाखिला नहीं होगा। ये सिर्फ मालदारों को दावत दी गई है और बगैर जी दूसरों को और आम लोगों को, गरीबों को और तंगदस्तों को जिसमें ना बुलाया गया हो, वो वलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदतरीन वलीमा है जी। इसलिए वलीमा भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि खिलाने का मौका है, दिल से खिलाने का मौका है, लेकिन दिखावे का मौका नहीं है जी। हमेशा हर जगह नुमाइश जो है वो टकराती है, जहां इरादे नुमाइश के आते हैं तो फिर वहां मामला जो है बिगड़ता है। नुमाइश के बगैर आदमी अगर जी अल्लाह के राह में खुशी खुशी खर्च करे तो उस खर्च करने से मना नहीं किया जाता है, लेकिन आजकल क्या होता है कि सामने वालों पर बोझ डाला जाता है। लड़की वालों से कहा जाता है कि वलीमा तो हम खिलाएंगे लेकिन आधा खर्च आपको बर्दाश्त करना होगा, मतलब खर्च तो लड़की वाले दे रहे हैं और नाम और नाक माशाल्लाह इनकी ऊंची हो रही है। तो सवाल ही जी गोया मामला ही गड़बड़ हो जाता है कि वलीमा तो लड़के वालों की तरफ से खिलाए जाने वाले खाने को कहा जाता है कि जो लड़के वाले खिलाएं। गुंजाइश इसकी भी है कि निकाह के फौरन बाद वलीमा किया जा सकता है, चूंकि वो लड़के वालों की तरफ से खिलाया जाने वाला खाना है, वो निकाह के फौरन बाद भी हो सकता है। बेहतर यही है, अच्छा यही है कि एक रात शबे जुफाफ, एक रात के गुजरने के बाद वलीमा किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन गुंजाइश इस बात की भी है कि एक रात के गुजरने से पहले वलीमा कराया जाए। लेकिन आजकल अल्लाह माफ फरमाए माशरे में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर शर्म से सर झुक जाता है कि उधर मेहमानों की लाइन बैठी हुई है और वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि सब वलीमा खाने के लिए तैयार बैठे हैं और इधर जी वो खुसुर फुसुर चल रही है, पता नहीं क्या बातचीत चल रही है। तो जरा गौर से देखें तो मालूम पड़ता है कि लड़का और लड़की अंदर हैं, उनके बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है कि वो बाहर आएंगे तो वलीमा खिलाएंगे। दिन में कोई जरूरी नहीं है कि दुल्हा दुल्हन को मिलाया जाए और दुल्हा दुल्हन के मिलाने के बाद ही वलीमे की दावत खिलाई जाए। ये सब जी माशरे में पैदा हो जाने वाली बुराइयां हैं, रसूम हैं, जिन रसूम की वजह से जी बेहयाइयां पनपती हैं, फहश और गंदगियों के तस्किरे चलते हैं। अब बच्चे बड़े सब जी एक मर्द औरत की मुलाकात वो उनकी नजी मुलाकात है, उनको इस तरह से मिलना चाहिए कि किसी को भी पता न चले और यहाँ पूरे शादी महल में चर्चा हो रहा है। तो ये सब वो बेहूदगियां बेहयाइयां हैं जो माशरे में पनप रही हैं। अल्लाह से दुआ फरमाएं अल्लाह जल्ले शानहु निकाह को भी सादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तर्ज व तरीके पर करने और वलीमे और मेहर को भी सही रुख पर लाने की अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फरमाएं।